ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमस्तुति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कर लेते हैं ठीक हो गया।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध 6 अध्याय 5 और अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप साप और श्लोक नंबर है 43। तंतु कृंतनाय यन्नास बोलिए तंतु कृंतन यन्नास्त्वाम् अभद्रम अचरः पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढा न भवेत् भ्रमतः पदम्। तन्तु कृन्तना यन्नस्त्वम् अभद्रम अचरः पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढा न भवेत् भ्रमतः पदम्। तन्तु कृन्तना यन्नस्त्वाम् अभद्रम अचरः पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढा न भवेत भ्रमता पदम। माताएं तंतु कृंतनः, हे शैतान जिसने निर्दयता पूर्वक मेरे पुत्रों को मुझसे विलग कर दिया। थोड़ा सब बोलेंगे तो आवाज आएगी, नहीं तो और थोड़ा आनंद भी बढ़ेगा। यत जो नह हमको त्वम तुम अभद्रम अशुभ वस्तु अचरह किया है पुनः फिर से, तस्मात इसलिए लोकेशु ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी लोकों में ते तुम्हारा मूढ़ रे धूर्त जो यही नहीं जानता कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, नहीं भवेत हो सकता है भ्रमतः भ्रमण करने वाले पदम धाम या घर। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है, आप लोग पीछे से दोहराइएगा। तुमने मेरे पुत्रों को मुझसे एक बार विलग कराया और अब पुनः तुमने वही अशुभ कार्य किया है, अतः तुम धूर्त हो जो यह नहीं जानता कि अन्यों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। भले ही तुम ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहे हो, किंतु मैं साफ देता हूं कि तुम्हारा कहीं भी निवास स्थान ना हो। तात्पर्य है शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, चूंकि प्रजापति ऐसे गृह में भी थे जो गृहस्थ जीवन में बने रहना चाहते थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि नारद एक स्थान में न रहने पाए अपितु सारे जगत में भ्रमण करते रहें तो उनके लिए यह बहुत बड़ा दंड होगा। अपने आप डिसाइड कर लिया, शास्त्रों के अनुसार नहीं। और नारद मुनि जी की स्थिति तो बहुत उच्च है, और जो उच्च पद में आसीन होते हैं और भक्ति में आसीन हैं, ऐसे महात्माओं का तो संग करना चाहिए और उनसे कृपा याचना करनी चाहिए, लेकिन यहां एकदम विपरीत हो रहा है। यहां दक्ष जी अपने आप को बड़ा मान लिए हैं, स्वाभाविक तौर पर बड़ा मान लिए हैं कि ये इनका तो कोई काम नहीं है, जैसे सांसारिक व्यक्ति भी कभी कभी कहते हैं ना, आप लोगों का तो कोई काम ही नहीं है, आप लोग जो हैं हमारे घर में हमारे बच्चों को बिगाड़ने आ जाते हैं, है नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी बहुत निम्न स्तर से बातें हो रही हैं, बहुत निम्न स्तर बातचीत का कोई वही नहीं है, एक शिष्टाचार कह रहे हैं नारद मुनि जी को, लेकिन खुद शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है, अमर्यादित स्वभाव। तो यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दंड होगा, किंतु वस्तुतः प्रचारक के लिए ऐसा दंड वरदान बन जाता है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रचारक परिव्रजकाचार्य कहलाता है, यानी ऐसा आचार्य या शिक्षक जो मानव समाज के लाभ हेतु सदैव विचरण करता रहता है। प्रजापति दक्ष ने यह कहते हुए नारद मुनि को शाप दिया कि यद्यपि उन्हें सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने की सुविधा है, किंतु वे किसी एक स्थान में कभी भी नहीं ठहर पाएंगे। भक्तों के लिए तो बड़ा अच्छा है एक स्थान में ना ठहर पाए, अच्छा श्राप है कि नहीं। भक्त प्रत्येक वस्तु को शुभ चीज में, अच्छे उसको पॉजिटिव रूप में लेता है कि यही कृष्ण की इच्छा है, यही जो है भगवान चाहते हैं, मेरे को और शुद्ध करना चाहते हैं, मेरे को और अपने नजदीक ले जाना चाहते हैं। और भक्त उसको बड़े खुशी खुशी, संसारिक व्यक्ति के लिए जो टेंशन है उस चीज को इशू बना लेते हैं। जो लोग संसारिक व्यक्ति इशू बना लेता है, छोटी सी चीज को इशू बना देगा, लेकिन भगवत भक्त जो है क्या है, उसी चीज को कैसे लेता है, कृपा के रूप में जो है ग्रहण करता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नारद मुनि की परंपरा में मैं भी शापित हुआ हूं, अपने लिए कह रहे हैं मेरे को भी श्राप मिला हुआ है। यद्यपि ऐसे अनेक केंद्र हैं जहां पर रहने के लिए बड़ा अच्छा स्थान है, किंतु मैं कहीं भी ठहर नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने तरुण शिष्यों के माता पिताओं द्वारा शापित हूं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बनाया जाट, पढ़ा लिखा करके किसी ने सोचा था इंजीनियर बनेगा, किसी ने सोचा था डॉक्टर बनेगा, किसी ने सोचा था साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन मैंने सबकी बुद्धि फेर दी और सबको क्या कर दिया, पूरा सब बाल बाल निकाल करके संसार वालों के लिए हजम करना बड़ा मुश्किल है। ये बाल तब निकालते हैं संसार में जब कोई शरीर छोड़ देता है बड़ा मुश्किल है संसार वालों के लिए हजम करना, असंभव। इसीलिए वो बहुत क्रुद्ध, यहां पर दक्ष भी जो है दाढ़ी उसकी किसी हुई है और कांप रहे हैं, कांपते हुए श्राप दे रहे हैं, वो बहुत क्रोध में। 10,000 पुत्रों को तो भक्त बनाया ही था, जो फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए उनको भी भक्त बना दिए। अद्भुत है, नारद मुनि है। नारद मुनि का, नारद का मतलब ही है वह जो, ना का मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं वह जो, और रद का मतलब कृष्ण को दे सकता है, वह जो भगवान को दे सकता है, मिला सकता है भगवान से, हैंडशेक करा सकता है, बात करा सकता है, उसको नारद मुनि कहते हैं। नारद ये जो संसार की परिभाषा है लोगों की, क्या परिभाषा, कि नारद का मतलब जो भिड़ा देता है, इधर की उधर लगाता है, वो अर्थ नहीं है, ये उनकी सीमित बुद्धि की सोच है नहीं, क्योंकि नारद जी तो बड़े उतावले हैं, वो तो चाहते हैं ये बद्ध जीव जैसे वासुदेव दत्त, जैसे प्रहलाद महाराज, सभी जीवों के प्रति इतने ज्यादा दुखी हैं कि वो आशीर्वाद भी क्या मांग रहे, भगवान अगर वरदान देना ही है तो इन सभी जीवों के कष्ट मुझे मिल जाएं। सोच सकते हैं कभी, हम अपने ही कष्टों का भार नहीं ढो पाते हैं, दूसरे के कष्ट लेना तो बहुत दूर की बात है, सोच में भी नहीं आ पाएगा कभी, वो दूसरों के कष्ट ले रहे हैं। तो भक्त जो हैं, जो निरंतर भगवान के चिंतन जो कर सकते हैं, जो भक्त, ऐसे भक्त जो हैं वो पर दुखा दुखी, वो दूसरों के दुख से जो हैं दुखी हो जाते हैं। अनेक भक्तों ने, प्रचेताओं ने, राजा प्राचीन बरही ने, और भी जो भी फंसे हुए थे, उन सब ने नारद मुनि जी के आगमन का लाभ उठाया, सब भक्त बन गए, लेकिन एक दक्ष ही है जो नारद मुनि का लाभ, बोलो, नहीं उठा पाए। नारद मुनि घर में है, नारद मुनि घर में है, घर में आए हैं, लाभ उठाना चाहिए, लाभ न उठा करके उनको क्या कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, बताइए कैसी मति फिरी है नहीं, ये मति फिरना ही है। एक परम भक्त जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उनका तुमको दर्शन हो रहा है, और उसका वैष्णवों का लाभ न उठा करके। और बताया भी गया है, जैसे भागवत में आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी जी के लिए बताया गया है कि गो दोहेन मात्रेण अपेक्षितः। सुखदेव गोस्वामी भी किसी के घर जाते थे तो केवल भिक्षा मांगने के लिए थोड़ी जाते, वो तो एक बहाना था। वास्तव में तो जितनी देर भी वो ठहरते थे, कितनी देर ठहरते थे, गाय जितनी देर में दुही जाती है बस उतनी देर के लिए, जितनी देर में 10-15 मिनट में गाय दूध दी जाती है उतनी देर घर में रहते थे। और उनको क्या करते थे, कृष्ण कथा सुना करके उनको विरक्त करके उनको हाथ में माला पकड़ा के वहां से निकल पड़ते थे। तो ऐसे ही नारद मुनि जी भी, नारद मुनि जी का क्या सरोकार, नारद मुनि जी थोड़ी कि बहुत बड़ा बंगला है जी, 2-4 दिन ठहर जाओ 11,000 दक्षिणा लगा देगा तो अच्छा हो जाएगा। नारद मुनि जी इसलिए नहीं वहां ठहरे थे, नारद मुनि जी तो सिद्ध हैं, सिद्ध व्यक्ति हैं। नारद मुनि कहते हैं कि मैं इतना शुद्ध भक्त कैसे बना, बोले भक्तों का जूठन खा करके। केवल भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, यही तीन सेवा है ते कृष्ण प्रेमा है, पुनः पुनः सर्व शास्त्रे फुकारिया कहे। अगर किसी को तीव्रेण बोलते ना, तीव्र गति से राजधानी एक्सप्रेस की तरह अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, नो स्टॉप, कोई स्टॉपिंग नहीं, तो उसको ये तीन चीजें जो हैं, शास्त्र बार बार, पुनः पुनः सर्व शास्त्रे फुकारिया कहे, बार बार इस बात पर जोर डालते हैं क्या, कि भक्तों के चरणों की धूली। आज भी आप बंगाल उड़ीसा में जाएंगे तो वहां पर भक्तों के लिए पता चल जाए कि वैष्णव आ रहे हैं। अभी स्थिति कलयुग में इतनी खराब हो गई कि हम मंदिर में रह के भी एक दूसरे को देख के भी देख रहे हैं, अननोन पर्सन भी हो अगर किसी को देखें हम तो क्या कहना चाहिए, हाथ जोड़ के हरे कृष्णा कहना चाहिए। कितने लोग तो अगर हरे कृष्णा भी ऐसे भी कहो तो ये कौन सा स्टाइल है, एक नया स्टाइल पैदा कर दिया, मतलब थोड़ा सा भी विनम्रता नहीं आई कि कम से कम अगर कोई एक दूसरे को हरे कृष्णा कहता है तो हाथ जोड़ के, ये हाथ जुड़ने चाहिए। ये आप कभी कार में जाओ ना बाहर, आप किसी को हरे कृष्णा बोलो बोलो, रेड लाइट में नहीं बोलेगा वो, अगर आप हाथ जोड़ के बोलोगे उनको हरे कृष्णा तो वो बोलेगा आज मेरे में ऐसा क्या है, मेरे को हाथ जोड़ रहे हैं स्वामी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वो भी हरे कृष्णा बोल देता है। फिर ये यहां से शुरू होता है, यहां वो अपने आप हरे कृष्णा बोल देगा। फिर अगर हम उसको जबरदस्ती बुलवाएंगे नहीं बोलते हैं कितने लोग, लेकिन अगर हाथ जोड़ के बोलोगे तो उसको बड़ा प्रभावित होता है कि मेरे लिए हाथ जोड़े जा रहे हैं, वो जो बोलोगे वो बोल देगा फिर आपको। तो विनम्रता ऐसी चीज है। और जो वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ा है, उत्तम हैया अपना के अधम माने, वो अपने आप को अधम ही समझता है, वो केवल ड्रेस कोड देख करके किसी भक्त की पहचान नहीं करता है कि ये इस ड्रेस में है उस ड्रेस में है, वैष्णव तो वैष्णव है भैया। हैया छेन हैबेन प्रभुर जतदास, ऊर्ध बाहु करी तार सवार चरण बंदन। जो भगवान के भक्त हो गए हैं और जो नहीं हैं, जो बाद में होंगे, अभी चार नियम तोड़ रहे हैं उनको माला भी मिली नहीं, अगर उसको भी हम तिरस्कार करते हैं, बड़ा उसको अपमान करते हैं, तो जब वो भक्त बन जाएगा तो वो अपराध भी काउंट होएगा, क्योंकि उसका हमने तिरस्कार किया था। भक्त के बारे में तो सोचने मात्र से अपराध शुरू हो जाता है। अगर आप सोच लें कि असीम कृष्ण प्रभु जी तो ऐसे हैं, बस हो गए, इतने से माला में इफेक्ट हो जाएगा, उस दिन माला आपकी ऐसे ही चली जाएगी, वो केवल खाना पूर्ति होगी 16 माला करने तक, बस इतने सोचने मात्र से। और इसका जीता जागता उदाहरण रूप गोस्वामी जी हैं, है कि नहीं, कौन सा उदाहरण आपको पता ही, रूप गोस्वामी जी लीला देख रहे थे कि राधा रानी क्या कर रही हैं, फूल तोड़ रही हैं उचक उठ उठ करके, क्योंकि फूल थोड़ा ऊपर हैं। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, ऊपर हैं, कृष्ण तो वैसे ही शैतान है, शैतान यहां पर बोल रहे हैं तो हिंदी शब्द में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कृष्ण जो है आनंद देने के लिए अपने भक्तों को, वो जो है राधा रानी को आनंद देने के लिए क्या कर रहे हैं, डाली को नीचे कर रहे हैं, राधा रानी ज्यों ही फूल तोड़ने जा रही तो ऊपर ऊपर कर रहे हैं उसको, तो फिर राधा रानी ऐसे कर रही है। तो एक दफे क्या हुआ, राधा रानी ने पकड़ ही लिया, और पकड़ लिया तो कृष्ण ने छोड़ दिया वहां से डाली, और जो छोड़ दिया तो राधा रानी लटक के रह गई, ऐसे झूलने लग गई। तो रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई, लीला में है, लीला देख रहे हैं, नाम रूप गुण लीला, लीला का चिंतन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, और हंसी आ गई। तो वहीं से एक स्मार्त ब्राह्मण जो हैं, वो भी ब्रज में रहते थे, वो निकल रहे थे, और वो थोड़ा सा कुष्ठ रोग था उनको, कोढ़ का रोग। उन्होंने सोचा मेरे को देख करके इनको हंसी आई है लगता है, मेरे शरीर को देख करके। उनके मन में जो है बड़ा दुख लगा, ये तो बड़े बहुत बड़े संत हैं, लेकिन ये भी इतना निम्न स्तर का सोच सकते हैं, ऐसा मन में सोच लिया। इतना सोचने मात्र से अभी कोई वार्तालाप भी नहीं हुआ, यहां तो हम लोग मुंह से बोल देते हैं, नहीं करेंगे, क्या है, ऐठे रहते हैं 24 घंटे। स्मरण केवल इतना सोचा था, इतने से क्या हो गया, उनकी लीला भंग हो गई। ये जो लीला देख रहे थे, ये लीला ही जो है आना ही बंद हो गया, बड़े दुखी हुए। बाद में सनातन गोस्वामी जी भी मिले उनसे, और उन्होंने ये सब बात बताई उनको कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि जरूर तुम्हारा किसी के प्रति अपराध हुआ है। कोई कहे कि मेरे को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए संस्था में, और मेरे को नाम में अनुराग नहीं हो पाया, क्या कारण है, तहाते अपराध प्रचुर, जी भर के अपराध हुए हैं, छक करके अपराधों की पूंजी कमा रहे हैं, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध। सबसे खतरनाक वैष्णव अपराध, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं। केवल 64 माला कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य शिष्टाचार भी अगर नहीं है, हमें जो भक्त नहीं भी है, जैसे कभी कभी हमने देखा है ब्रह्मचारी लोग घर जाते हैं तो वो पिताजी को प्रणाम नहीं करते हैं, दूर से ही, ओ ये तो कर्मी है, कर्मी है, अरे तू कौन सा भैया, इतना वो कौन सा यहां से उतर के आ गए भैया, उन्हीं ने पैदा किया, अगर उनको जाके प्रणाम करोगे तो खुशी होगी, बेटा बड़ी अच्छी जगह गया, ये सीख के आया, देखो यहां रह के 16 पास होने के बाद भी नहीं सीख पाया था, कम से कम बड़ी अच्छी संस्था में गया है। वहीं से उनका भी मन करेगा, बेटा मैं भी आऊं तेरे संग, प्रचार हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन सा प्रचार है पहले बताइए, कि कर्मी हम समझ ले, तो क्या विनम्रता हुई पहले बताइए। चींटी को भी, हमारा शास्त्र कहता है चींटी को भी सम्मान करना है। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियत दीक्षा अस्ति चेत प्रणति भिस्तम भजंतम इसम, कितना सुंदर कैटेगरी, देखिए कैटेगरी में भी कितना ऊंचा स्टैंडर्ड। रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, अभी नियम भी तोड़ रहा है लेकिन नाम ले रहा है, उसका मन से आदर करना है। कहां से आदर करना है, मन से, फॉर्मेलिटी से नहीं, मन से, उसका भी सुधर जाएगा। भगवान अपने भक्त को चाट चाट के साफ कर देते हैं, ये उनका डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट है हमें जो बता रखा है अपना कर्तव्य करें हम, बाकी शुद्ध करने का डिपार्टमेंट भगवान का है, वो करेंगे। तो क्या बात बता रहा था मैं, हाँ वेरी गुड, लेकिन अभी क्या बात बता रहा था लास्ट में है, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियत, मतलब जो व्यक्ति नियम भी तोड़ रहा है लेकिन केवल नाम जप रहा है उसको भी आदर करना है मन से वो भी, और जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जिन्होंने परंपरा को, परंपरा में जो संलग्न हो गए, जुड़ गए, उनको प्रणाम करना है एक दूसरे को देख करके, है कि नहीं। तो ये परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को देख के हरे कृष्णा कहना, प्रणाम, ये भक्तों का पहला कर्तव्य है, पहला ड्यूटी। सामान्य शिष्टाचार हम देखते हैं आजकल बड़ी बड़ी क्लासें भी शुरू हो, ये सेमिनार, वो सेमिनार, वो सेमिनार, भागवत क्लास में नहीं बैठना है लेकिन सेमिनार बहुत सारे हमने देखा है, सेमिनार करके आते हैं 7 दिन वैष्णव एटिकेट के ऊपर, लेकिन देखते ही उधर को मुंह करके चले जाएंगे। तो मैंने कहा कौन सा वैष्णव एटिकेट का सेमिनार हुआ है, सेमिनार बड़ी बड़ी बातें उसमें सुनी सब, लेकिन भक्त को देख करके कोई खुशी ही नहीं। ये भी वैष्णव अपराध है, भक्तों को देख करके सम्मान नहीं सोचना या खुशी नहीं होना या आदर नहीं देना, यही तो वैष्णव अपराध है छह प्रकार के में। तो ये अपराध प्रचुर इकट्ठे होते जाते हैं, तो इसलिए हरि नाम में रुचि क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, क्या इतने समय से जप रहा हूं हरे कृष्ण ठीक है बस हो गया, थोड़ी देर फिल्मी गाने सुन लेने चाहिए, अभी उनमें ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वैष्णव अपराध जो व्यक्ति करेगा उसका स्त्री में और धन में आकर्षण शुरू हो जाएगा, फिर से सांसारिक लोग बड़े अच्छे लगने लगेंगे, बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है कि नहीं, संसार के लोग फिर से वो बाहर, फिर बोलता है बाहर ज्यादा अच्छा है, यहां तो ये है वो है वो है, फिर उसको सब गलत दिखने लगता है। तो मैं ये बात पर प्रकाश थोड़ा सा इसलिए डाला क्योंकि ये बहुत जरूरी है, फिर हम खुशी खुशी भजन कर पाएंगे, हमारे चेहरे में खुशी होगी, हम आनंदित होंगे एक दूसरे को देख के। यही तो है, ये जो वैष्णव बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, आप ही महाशय हैं, महाशय मतलब महान आत्मा। आपको पता है शिवजी एक दफे जा रहे थे और एक गांव आया, उस गांव को प्रणाम करने लगे हो, जब प्रणाम किए गांव को तो पार्वती जी ने पूछ लिया, प्रभु ये गांव में क्या रखा है ऐसा जो कि इसको प्रणाम कर रहे हैं। बोलते हैं शिवजी की करोड़ों वर्ष पहले यहां एक शुद्ध वैष्णव जन्म लिया था, उन्होंने यहां भजन किया था, इसलिए गांव भी क्या हो गया, धन्य हो गया है, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। वैष्णवाराम यथा संभव है और प्रणाम कर रहे हैं, देखिए आदर्श गांव को, अभी वो वैष्णव नहीं वहां पर लेकिन गांव को प्रणाम कर रहे हैं। वो बताया भी ना, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधराश्च वसतिश्चम धन्या, नृत्यन्ति येषां पितरं च स्वर्गं तेषां वैष्णवानामं ध्येयम्। पितर भी जो एक घर में किसी के वैष्णव बन जाता है, आप जो वैष्णव बन गए हैं, ये हरे कृष्ण जैसे तैसे भी जप रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं यहां पर, और आंखें पवित्र हो रही हैं, कान पवित्र हो रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा काम, विश्व का अगर सबसे बड़ा कोई कार्य है वो है ये भगवत भजन करना, यही तो कठिन है, बाकी सब क्या है आसान लगता है, सोते सोते सब कुछ करना, कथा सुन लेना, माला कर लेना, भगवान का दर्शन करना, चार बजे उठना, यही तो कठिन काम है, सबसे कठिन काम, यही आदत तो छूट गई है भक्तों की। तो यहां आके प्रभुपाद जी की कृपा से ये आदत फिर से बना दी उनने, बैकुंठ में जो आचरण होता है जैसा, वैसा आचरण बना दिया, बैकुंठ लोक बना दिया। इस पृथ्वी लोक में भी हम पूर्ण रूप से आभास कर सकते हैं कि यही बैकुंठ है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, न लगे हींग न लगे फिटकरी, बैठे बैठे भोजन दे मुरारी, है कि नहीं, कोई न चले हल न चले कुदारी, बैठे बैठे भोजन दे मुरारी। मेरे को वो बात हमेशा याद आती है, क्या बोलते हैं, राम नाम पर कर ही भरोसा, सुंदर भोजन मिले ही परोसा, परोस के मिलेगा, और खाओ प्रभु जी, और ले लो थोड़ा और ले लो। संसार में अगर आप बड़ा पाव खाने जाओगे बाहर, कोई बोलेगा कि आधा आधा पाव और ले लो, पैसे पे करने पड़ेंगे, यहां आधा पाव नहीं दस पाव दे देगा, जैसे कि घर का माल है, समझ रहे, प्रभुपाद जी बिखेरे हुए हैं, कितना खा रहे, हम सब कितना लुटा रहे हैं, सच में हम कितना लुटा रहे हैं, कितना हम गिफ्ट देते हैं लोगों को, देखो साधु होके ऐसे भिखारी के दूसरों को दे रहे हैं, अद्भुत है। सबसे बड़ा देना तो कृष्ण को देना है, तो इस प्रकार से सब धन्य हो जाता है। और शिवजी आगे गए और आगे जाके क्या किए, एक स्थान आया जंगल, उस जंगल को प्रणाम करने लगे वो। तो पार्वती जी फिर पूछती हैं, प्रभु यहां क्या हो गया, यहां तो कोई नहीं होगा, यहां क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो शिव जी बोलते हैं, आपको पता है कुछ दिनों बाद यहां पर एक गांव बनेगा और वो सभी के सब वैष्णव होंगे, इसलिए मैं पहले से ही एडवांस में प्रणाम कर रहा हूं। ये है भावना, इसको कहते हैं भक्ति की। यहां प्रत्यक्ष वैष्णव दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वैष्णव महिमा याद नहीं है, भूलने की प्रवृत्ति है, बार बार चार प्रकार के जो दोष हैं, भूलने की प्रवृत्ति, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, बार बार सुनने के बाद भी भूल जाते हैं, है नहीं? कितने हम अद्भुत जगह पर बैठे हुए हैं, साक्षात वैकुंठ में, सच में ये जगह ही अपने आप में कृतार्थ है, धन्य है। प्रभुपाद जी ने पूरी बॉम्बे नगरी को धन्य कर दिया, शुद्ध कर दिया, प्रभुपाद जी ने सबको पवित्र कर दिया। नरकों में भी ये चार महानरक हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, इन नरकों को प्रभुपाद जी ने क्या बना दिया, वैकुंठ बना दिया। यहां पर भक्त जहां तहां, हमारे दिल्ली मंदिर में गढ़ी, उसको बोलते हैं गढ़ी गांव था, वो गढ़ी गांव, उसका नाम संत नगर भी है, संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश। तो मैंने कहा सार्थक हो गया, यहां पर सब लोग जहां मंदिर था वहां पर डब्बा ले जाकर के क्या बोलते दीर्घ शंका करने जाते थे, जंगल में मंगल बना दिया प्रभुपाद जी ने। गढ़ी गांव को क्या कर दिया, जहां तहां से किसी भी गली से कौन निकल रहे हैं, साधु निकल रहे हैं, संत नगर बना दिया, संतों का नगर बना दिया। तो क्योंकि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी सेवा की है, बहुत जीव दिल खुश होकर के सेवा की है प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी के शिष्य उनको इतने समर्पित शिष्य मिले हैं, प्रभुपाद जी को सभी शिष्य जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं सब समर्पित शिष्य हैं, उनकी कृपा से आज ये मूवमेंट आज भी वैसे के वैसे ही जो है हमें, बल्कि और देखिए प्रभुपाद जी इन सबको, प्रभुपाद जी के रहते रहते ये बना था, लेकिन अभी और पीछे गेस्ट हाउस बन गए, बनेगी नहीं तो विस्तार ही हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ऊपर से खुश हैं, परम प्रसन्न हैं, इसीलिए ये इस्कॉन संप्रदाय जो है भक्त बनाने की मशीन है, यहां भक्त बनते जा रहे हैं तिलकधारी। प्रभुपाद जी ने मार्केटिंग की, वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका, हर माथे पर लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। अमेरिका में वैष्णव घुमा दिए, देखिए पूरा अमेरिका में घूम रहे हैं भक्त लोग, एयरपोर्ट पे भक्त कोई ना कोई मिल ही जाता है, जब भी जाओ कोई ना कोई महाराज घूम रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, पूरी पृथ्वी धन्य हो गई भक्तों से। धन्य हुई कि नहीं हुई पहले बताइए, है नहीं तो क्या जीना था, ये कोई जीना है संसार में जो जी रहे लोग, पृथ्वी धन्य हो गई। तो इसीलिए हमें जो है जी भर करके वैष्णव चरित्र सुनना चाहिए, वैष्णव चरित्र पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। बताया गया शास्त्र में कि संतोषम त्रिशु कर्तव्यम, तीन चीजों में संतोष कर लेना चाहिए और तीन चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए। क्या है, स्वदारे भोजनम धनम, स्वदारे मतलब अपनी पत्नी से संतोष हो जाना चाहिए, और भोजनम जितना हमको जैसा भी मिले उस पर हमको संतोष होना चाहिए भोजन में, क्योंकि तभी सुख होगा, अन्यथा दुखी जीवन। और धन जो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार जितना हम डिजर्व करते हैं हमको मिला है, उस धन पे संतोष करना चाहिए, ये तीन चीजों में। लेकिन तीन चीजों में कभी संतोषम नैव कर्तव्यम, कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। वह है जप ध्यानम अध्ययनम, जप में कभी संतोष नहीं करना चाहिए और माला हो जाए, और ध्यान में भगवान का ध्यान करने में, भगवान का चिंतन करने में, और अध्ययन में। प्रभुपाद जी की किताबें जितनी दफे पढ़ोगे ज्ञानी नहीं बनोगे, भक्त बनोगे। कभी कभी लोगों ने प्रभुपाद जी की किताबें भी ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, किसने कहा, प्रभुपाद जी ठोक बजा करके तात्पर्य लिखे हैं, आप अहंकारी नहीं बन पाओगे, आप अगले ही पल प्रभुपाद जी अपने उदाहरणों से शास्त्रों के कोटेशन देकर के ठीक कर देते हैं, पूरा विनम्र बन जाएंगे हम ज्ञानी नहीं बनेंगे, हम भक्त विमल ज्ञानी बनेंगे। तो जितनी दफे प्रभुपाद जी का संग होता है, प्रभुपाद जी की किताबों में प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से जीवित हैं, क्या प्रभुपाद क्या चाहते हैं ये उनकी किताबों में है। आप में से कितने भक्त हैं जिन्होंने भागवत पूरी पढ़ ली है तात्पर्य समेत, एक दफे भी हाथ खड़ा करेंगे, बहुत कम लोग हैं। तो निवेदन है अगर सच में प्रभुपाद जी को खुश करना चाहते हैं, वो 3 बजे तक लिखते थे, हम 3 घंटा पढ़ ले एक दिन में वही बहुत हो जाएगा। वो 3 बजे तक 2-2 बजे तक लिखते थे, हम 3 घंटा छोड़ो 1 घंटा पढ़ ले हम, तो उनके प्रति थोड़ा बहुत ऋण हमारा समापन हो, हमको पता चलेगा प्रभुपाद हैं क्या। आप रोगे, सच बता रहा हूं, जब भी मैं पढ़ता हूं मेरे को यही फील होता है, ये लाइन मेरे लिए लिखी हुई है, ये मेरे लिए लिखी हुई है बस। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं, यहां पर सभी भक्त, सभी प्रकार के भक्त बैठे हैं, सब प्रश्नों का उत्तर, जैसे तृतीय स्कंध में कपिल मुनि जी का आख्यान है, तो उसमें क्या है, कपिल मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से गर्भ में बच्चा छोटे से फिर बड़ा होता है। तो लोग आज ये सोचते हैं कि लड़का होगा लड़की होगा, प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर बाई साइड घूमे हो 4वें महीने से तो लड़की होगी, दाई साइड घूम रहा है तो क्या होगा, लड़का होगा। अब इतनी सी चीज के लिए वो कहां कहां डॉक्टरों को चेक करा रहे हैं, फिर अबॉर्शन करा रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, जितने टाइप के प्रश्न हैं आपके, वो प्रश्न हो भी नहीं सकते हैं इतने टाइप के प्रश्नों का। हम केवल पढ़े हैं, वो भी प्रभुपाद जी का संग है, और भागवत सुने, भागवत पुरुषों से, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। तो इस प्रकार से हम जो हैं अपने भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं भी जो है शापित हुआ हूं नारद मुनि की तरह, और मैं जहां जहां जाता हूं वहां मुझे आरामदेह स्थान ठहरने को दिए जाते हैं, किंतु मैं कहीं भी 3 दिन या 1 सप्ताह तक रुक नहीं पाता। मैं अपने शिष्यों के माता पिताओं के इस साप की परवाह नहीं करता, किंतु अब यह आवश्यक है कि मैं किसी एक स्थान पर रुकूं, श्रीमद भागवत के अनुवाद को पूरा करूं। यदि मेरे तरुण शिष्य मेरा ये भार ले लें, यही श्राप वो ले लें जिनको मैंने संन्यास दिया है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मैं एक जगह रुक के भागवतम का अनुवाद करूंगा और वो लोग प्रचार करेंगे। अच्छा है उनको भी ऐसा श्राप मिले कि जगह जगह जाएं वो और क्या करें, और अन्य लोगों का उद्धार करें। तो इस श्लोक में महत्वपूर्ण बात क्या है, भक्त जो है कभी भी बदले की भावना नहीं रखता है। जैसे भागवत में समीक ऋषि जी अपने पुत्र को श्रृंगी को डांट करके कह रहे हैं, क्या श्लोक है, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह सिप्ताह हृता अपि नास्य ततः प्रतिकुर्वन्ती तद्भक्ता प्रभवोदपि ही। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने पर अगर कोई उनका अपमान कर रहा है तो भी बदला लेने का भाव नहीं सोचते हैं कि अब इसका बुरा हो जाए, इसको जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक कलेजे को ठंड नहीं पड़ेगी। ये भक्त के तो संसारिक व्यक्ति का भावना है नहीं, ठगे जाने अगर कोई ठग दे उसको तो भी, और शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा मारने पर भी वो बदला लेने का विचार तक भी नहीं करता है। और ये आपने देखा है भक्तों के चरित्र से, हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको, मार्केट में उनको कोड़े लगाए जाए, कितना आसान है सुन ले हमारे लिए, थोड़ा उसमें चिंतन अगर मनन करें, 22 बाजारों में कोड़े, यहां तो कोई भक्त अगर बोल दे कि ये प्रभु जी थोड़ा करताल दे दे तो उठने में जो है हमको बड़ा मुश्किल होता है, अगर मान लिया किसी को करताल उसमें उठ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कभी कभी लगता है ना उठने में एकदम तकलीफ होती है। बाईस बाजारों में कोड़े खाकर के भी उनसे भीख मांग रहे हैं, भैया आप मर जाओ, हरिदास ठाकुर आप मर जाओ ना, क्यों, बोले नहीं तो राजा हमें मारेगा। तो हरिदास ठाकुर को वो राजा के पास लेके गए, राजा ने बोला इसको कहां डाल दो, पानी में डाल दो, इसको जो है इसको क्योंकि मुसलमान होके हिंदुओं का नाम लेता है इसको नसीब नहीं होगा, क्या मजार, इसको उस पर दफनाओ नहीं, पानी में इसको ऐसे मृत्युदंड दो। पानी में डाल दिया, हरिदास ठाकुर फिर जीवित वहां से बच रहे हैं। अब भैया भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि मर नहीं रहे हैं, मरना चाह रहे हैं, शरीर छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे हैं, अद्भुत नहीं है, कितनी शक्ति है भगवान के नाम में। तो हमें किस बात की चिंता, हमारे हाथ में हरे कृष्ण महामंत्र है, हमारे हाथ में प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, हमारे सामने भगवान के दर्शन हैं, तो क्या किसी से जलन, किसी के पास हवाई जहाज हो जाए, कोई रिक्शे वाला हवाई जहाज में बैठने लग जाए तो आदमी बोलता है कल तक तो ये शराब बेचता था हवाई जहाज में बैठ रहा है, उसी पर चर्चा शुरू हो जाती है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, बैठ रहा है तो बैठने दो, तुम भी बैठो। वही चर्चा जो है संसार में इतनी चलती है, तो क्या वो क्या शराबी बेचते रहे, हमेशा रिक्शे वाला ही रहे, आप क्या चाहते हो मतलब बताइए, वो रिक्शे वाला ही रहे। फिर लोग बोलते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अरे चली तो सही, तू तो अभी भी खा रहा है। मतलब पुरानी चीजें, भक्त के पुराने जीवन को उघेलना, ये भी हम लोगों में पहले से ऐसा था, कुछ भी नहीं था जब आया था, एक धोती भी नहीं थी, फटी हुई थी, आज देखो घर बना लिया इसने, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम भी बनाओ भाई। किसने कैसे बनाया, क्यों बनाया, कितने दिन रहा हो, अभी कभी कभी इसी में पता चला एक दो दिन एक भक्त नहीं दिखाई दिया, अब तीसरे दिन पता चला आधे भक्तों का उसके ऊपर व्यवहार ही, मंगलारती नहीं आता है, मंगलारती नहीं आता है, अब तुमको पता है वो कहां था, वो यहां था ही नहीं, वो कहीं गया हुआ था भाई, बाद में कुछ और पता चला। जैसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, एक लड़का जो है एक लड़की के गले में हाथ डाल के ऐसे जा रहा था, लोग बोलते हैं हाय राम कैसा कलयुग आ गया, देखो पता नहीं क्या हो गया, ये है वो है, सारा कुछ सुना दिया उसने, सब बेकार हो गया, क्या देखो बेशरम हो गए हैं। बाद में पता चला वो भाई बहन थे, क्या पता चला बाद में भाई बहन थे, तो बोलता ओहो। तो हम किसी के भी बारे में किसी भी चीज को तुरंत ही जो सोचने लग जाते हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी भक्ति को रोकने का, स्ट्रेगनेट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। पहले जान लें, जैसे एक भक्त हमारे दिल्ली मंदिर में हिज ग्रेस राधा दामोदर प्रभु जी हैं, वो बीच में नहीं आ रहे थे 10-15 दिन से मंगल आरती, तो एक नया भक्त जो है वो पूछने लगा प्रभु जी ये तो आते ही नहीं, देखो 30 साल से बोलते हैं मैं हूं इस्कॉन में, वो तो बड़े भक्त नहीं आएंगे। तो मैंने कहा भाई आपको पता है वो कहां थे, वो भागवत सप्ताह करने गए थे, और मान लिया नहीं भी आ रहे हो, जब तुमको 10 साल हो जाएंगे सोसाइटी के अंदर तब तुम कितना आते हो मैं तुमको देखता हूं फिर। तो इसीलिए अपने को देखो, अपना सुधार तो जगत का सुधार, दूसरों के बारे में कौन क्या करे, क्योंकि हरेक की अपनी अपनी, कौन कहां गया है क्या है, किसी की मजबूरी है, पहले पूरा तो जान लो फिर तो कमेंट करो, और कमेंट करने के लिए तुमको किसने बनाया चौधरी, क्या तुमको वो अधिकार दे रखा है, ये अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे हो, तो ये सब अपराध हैं। इसीलिए नाम में रुचि नहीं होती है। इसीलिए बड़ा सुंदर है एक स्लोगन, यस्टरडे आई वॉज क्लेवर, बीते हुए कल में मैं क्या था, बड़ा चतुर था, सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, मैं जो है पूरे विश्व को बदलना चाहता था, सब गलत है, ये भी गलत है, इसको ऐसा ठीक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, टुडे आई एम वाइस, बोलते हैं मैं इसमें क्या हुआ, हताश हो गया, आज मैं बुद्धिमान हो गया हूं, सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, अब मैं सोच रहा हूं कि अपना सुधार करूं, बस सबसे पहले अपना सुधार, जगत का सुधार। और ये जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम हैं, ये कैसे हैं पता है, प्रॉब्लम्स आर लाइक वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन की तरह है प्रॉब्लम्स, कैसे, दे ट्विस्ट, पहले घुमाती हैं ये, और दे स्पिन एंड नॉक 45 अराउंड, 45 मिनट तक क्या है, खूब चर्निंग चलती है, बट इन द एंड वी कम आउट क्लीनर ब्राइटर एंड बेटर देन बिफोर, एकदम साफ सुथरा होकर के बाहर आते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दो। तो जितनी भी परेशानियां हैं भक्त के जीवन में, जो भी परेशानी आती है उसको वो क्या सोचता है, प्रभु की कृपा है, तस्या अहम अनुग्रहणामी हरिष्ये तद धनम सने है, जिसके ऊपर मैं बड़ी कृपा करता हूं उसकी प्रिय वस्तु को हरण कर लेता हूं, धन का मतलब प्रिय वस्तु, किसी का स्त्री से प्रेम है तो उसको मैं क्या कर देता हूं, वो पता चला वहां गद्दारी हो रही है, भाग जाएगी दूसरे के संग, बड़ी कृपा हुई प्रभु, समझ रहे नहीं, तो प्रिय वस्तु या धन में, बहुत सारा धन में पता चला धनी लूट गया, सुखेरो लागिनू ए घर बाधिया, है ना। सुख के कारण घर बनाया, पता चला घर गया तो उसमें आग लग गई, सारा घर ही जल गया एकदम। तो बड़ी कृपा है भगवान की, अगर कुछ हमारा हमको जो नुकसान लग रहा है उससे बड़ी कृपा तो कुछ है ही नहीं संसार में। तो भक्त इसको, जैसे विदुर जी को भी डांट पड़ी, दुर्योधन ऐसा ऐसा उनको शब्द बोलता है, बड़ी कृपा हुई तभी तो निकले। और निकल करके मैत्रेय ऋषि जी से प्रश्न कर रहे हैं, आनंद घूम रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं। तो ये श्राप मिले हमें भी, ऐसे श्राप मिले हैं कुछ बढ़िया वाले, कितने भक्त चाहते हैं ऐसा वाला श्राप बताएंगे? चाहते हैं नहीं? आधे लोग बोलते नहीं, अभी तो अमेरिका रिटर्न होना है। अभी अभी इतनी जल्दी मत करो प्रभु, थोड़ा इच्छाएं बाकी हैं, है ना। कोई बात नहीं। तो इसके ऊपर मैं एक बड़ी सुंदर मेरे को घटना, आपने वो सुना भी है, आपने धनुर्दास भक्त के बारे में सुना होगा। जो ये धनुर्दास जो भक्त थे, ये मद्रास में त्रिचन्नापल्ली, जो त्रिची बोलते हैं ना श्रीरंगम, उसके पास एक स्थान है उदयपुर। तो इनका पुराना नाम था, इसका पुराना नाम था निचलापुरी। ये वैष्णवों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले यहां एक धनुर्दास नाम के पहलवान, बाद में परम वैष्णव बन गए हो, ये धनुर्दास पहलवान थे। और उसी स्थान पर हेमांबा नामक एक अत्यंत सुंदरी वैश्या रहती थी। धनुर्दास उस वैश्या के रूप पर मोहित हो गए और जहां भी जाता वहां उसे ले जाता और रास्ते में आगे आगे उसको देखते हुए उल्टे चलता। इतना स्त्रैण हो गया, इतना पागल हो गया स्त्री के प्रति कि अगर चल भी रहा है तो स्त्री सीधे चल रही, वो उल्टा चल रहा है। मतलब ऐसा ऐसा प्रेमी तो बड़े कम देखे हैं। फिर ये तो लैला मजनू हीर नाझा से भी ऊपर हो गया। सही सही में मतलब स्त्री चल रही है और ये उल्टा चल रहा है, मतलब इतनी देर के लिए भी उसे देखे बिना जीवित नहीं रह सकता है, ये स्थिति है। और जहां कहीं भी वो बैठती थी उसके सामने आकर बैठ जाता था। और उसका व्यवहार सबके लिए कुतूहलजनक था, सारे लोग देखते थे कैसा व्यक्ति है, कैसा प्रेमी है। आहा, प्रेमी हो तो मिसाल देते थे, धनुर्दास पहलवान जैसा हो। और स्त्रियां तो बड़ी खुश, स्त्रियां तो अपने पति को हिंट मारती थी, ऐसा होना चाहिए आपको भी, ठीक है कि नहीं? क्योंकि शादी के बाद ऐसा नहीं हो पाता ना, वो शादी से पहले ही ऐसा एक साल तक चलता है वो, उसके बाद तो फिर कोई फिर वो स्थिति नहीं होती है। तो वह निर्लज्ज होकर स्त्री को देखना कभी भी नहीं छोड़ता था। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्रीरंगम, त्रिचन्नापल्ली से श्रीरंगम के पास ही है। कई बार यहां महोत्सव होते हैं, दूर दूर से लाखों यात्री आते हैं। एक बार रंगनाथ जी का बासंती महोत्सव चल रहा था, बहुत बड़ा बासंती महोत्सव मनाया जाता है। तो धनुर्दास जी की प्रेयसी ने भी उत्सव देखना चाहा, यही वैश्या ने। धनुर्दास उसे नौकरों चाकरों के साथ लेकर निचलापुरी से रंगम आ गया। अब नौकर चाकर भी रखे हैं, पानी, यस एक गिलास पानी, सब कुछ, दो दो मिनट में उसके लिए हाजिर हो रहा है और खुद महानौकर बन के बैठे हुए हैं। भगवान को देखने नहीं, वैश्या भगवान को देखने आई है, महोत्सव देखने, और ये उसको देखने के लिए बोलता है मैं तुम्हें देखूंगा, कितना अच्छा चल रहा है। तो गर्मी के दिन 9-10 बजे की कड़ी धूप, मार्ग में खचाखच भीड़, जबकि भीड़ में अकेले अपने शरीर को संभालना तक कठिन था, उस समय भी वहां धनुर्दास हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी को छाता किए हुए था। कड़क धूप और प्रेयसी को जो है क्या कर रहा है, ऐसे छाता लेके खड़ा हुआ है और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ होकर के उस स्त्री की ओर मुख को देखते हुए पीछे पीछे चल रहा है, पीछा होकर के। उसे मार्ग का और अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है, इतना पागल हो गया है। उन दिनों श्री रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में थे। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का यह कर्म बड़ा पुराना था, सब उसको डेली देखते थे, उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। रामानुजाचार्य जी के लिए ये नवीन यात्री ये कौन है? रामानुजाचार्य जी की नजर धनुर्दास पे पड़ी, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा ये निर्लज्ज कौन है, उसे जाकर कहो कि तीसरे पहर में मठ में आकर मेरे से मिले, जाके कहो उसे। धनुर्दास ने उस शिष्य से रामानुजाचार्य जी का आदेश सुनाया, वो तो एकदम सन्न हो गया, भैया अब मेरी डांट पड़ने वाली है, अब तबियत से जो है कुटाई होगी, सोचने लगा। और बोलते हैं जहां सब लोग श्रद्धा भक्ति से जाते हैं वहां मैं इस कार्य के अनुसार दंड के लिए बुलाया जाऊंगा। लेकिन फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं, मठ जाना तो निश्चित है, स्वामी जी ने बुलाया है। तो रामानुजाचार्य जी ने क्या हुआ, इसके आने से पूर्व रामानुजाचार्य जी भगवान के पास खड़े हुए और रंगनाथ जी से मंदिर में जाकर प्रार्थना की उन्होंने कि मेरे दयामय स्वामी, एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। रामानुजाचार्य जी मिलने से पहले भगवान से प्रार्थना करके गए। भोजन करके धनुर्दास मठ पर पहुंच गया, समाचार पाकर रामानुजाचार्य जी भी मठ के भीतर बुला लिए उसको, और उसके अद्भुत व्यवहार का कारण पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो, इतना पागलपन है एक स्त्री के लिए, वो भी पीछे पीछे चल रहे हो, छाता ले रहे हो, अपना धूप। तो बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर धनुर्दास ने बताया, स्वामी मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूं, उसे देखे बिना मुझसे नहीं रहा जाता, काम वासना तो मुझ में ऐसी प्रबल नहीं है, पर उसके रूप को मेरे आंखों से छोड़ा नहीं जा रहा है, मैं उसे न देखूं तो बेचैन हो जाता हूं, महाराज आप जो आज्ञा करें आगे मैं वही करूंगा, पर उसका साथ ना छोड़ाएं। ये भी बोल दिया, मतलब शर्त पहले लगा दी कि ये वाली बात। ये स्थिति होती है हर जीव की। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, यदि हम उससे भी और अधिक अच्छा मुंह दिखा दें तुम्हें, तो उससे भी ब्यूटीफुल, उससे भी सुंदर मुख अगर तुम्हें दिखा दें तो बोलते हैं धनुदास ने कहा, महाराज उससे सुंदर मुख देखने को मिलेगा तो मैं एकदम परित्याग कर दूंगा उसका। देखिए जीव, जीव कितना जो है क्या है, एहसान फरामोश है। हम इस संसार में थोड़ी सी ज्यादा धन मिल जाए पहले वाले को छोड़ देते हैं। तो श्री स्वामी जी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग मत करना, अब मैं तुमसे शर्त रखता हूं, वह वैश्या थी, तुम्हारे पास आकर वो स्त्री हो गई तुम्हारी, तुम छोड़ दोगे तो फिर से वैश्या हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वह अब सुधर गई है, उसने तुम अपनी पत्नी बनाकर यहां रहने दो, तुम जो उसके रूप पर इतने मुग्ध हो बस ये ठीक नहीं है, तुम्हें यह स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ जी की आरती होगी उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना, अकेले में मिलना, लेकिन कोई नहीं हो, तब मैं तुमको ज्यादा सुंदर मुखड़ा दिखाऊंगा। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ, बड़ा आश्चर्य हो रहा था उसे, आचार्य स्वामी जी ने उस जैसे नीच जाति के पुरुष को मठ के भीतर बुलाया, मैं तो सोच रहा था डांटेंगे, उन्होंने डांटा नहीं, बड़े प्रेम से स्नेह से अपने बेटे की तरह मेरे पास बैठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया। उसे तो आचार्य आशा थी कि मुझसे बहुत कुछ कहेंगे, वो भय से जो है क्या हुआ थर थर कांपता, कहीं मुझे सांप ना दे दें, मैं तो कांप रहा था। वह सब कुछ तो नहीं हुआ, घर आकर उसने स्त्री से सब बातें कह दी, और वो स्त्री भी जो है क्योंकि अब वो भगवान का दर्शन करने आ रही थी, महोत्सव में आ रही थी, वो भी भक्त बन गई थी, तो वो भी चाहती थी कि धनुर्दास मेरे प्रति इतना लट्टू ना रहे, मार्ग में धनुर्दास उसके आगे आगे पीछे ना घूमे, यह व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। वह सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी, वह उसका सुधार चाहती थी, किंतु इस भय से कि धनुर्दास उसे छोड़ ना दे कुछ कहती नहीं थी। उसे प्रसन्नता हुई कि इस आशा से कि आचार्य स्वामी जी धनुर्दास को अब सुधार देंगे आज जरूर। जब शाम का समय हुआ, रंगजी में मंदिर में वो गया तो उसे किसी ने भीतर जाने से रोका नहीं, आचार्य स्वामी जी ने उसे ध्यानपूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास तो आरती के समय ही एकदम बदल गया, जिस सौंदर्य सुधा सागर के एक सीकर से स्वर्ग का सारा सौंदर्य निकला है, त्रिभुवन की सुषमा जिनकी छाया के किसी एक अंश में भी नहीं है, उस सौंदर्य सागर सर्वस्व प्रभु को आज धनुर्दास ने एक झलक पाई थी। और ये झलक भी कैसे पाई थी, देखते तो बहुत लोग हैं भगवान को, लेकिन कोई भक्त आशीर्वाद अगर अपनी आंखों से तुम्हें दिखाए, जैसे अक्सर हम लोगों को बोलते हैं ना कि आप आइएगा हमसे मिलिएगा, लोग कहते हैं नहीं स्वामी जी हम दर्शन करके चले जाए, बोले नहीं मिलिएगा, क्योंकि आप उसको बता सकते हो ये गेस्ट हाउस है, यहां पर ये है, यहां ये है, क्योंकि आप अपनी आंखों से जब दिखाओगे तो उसको बहुत कुछ लगेगा मंदिर में, भैया यहां फूड फॉर लाइफ भी है, नहीं तो बोलते रह जाएंगे खाली दर्शन से क्या होता है स्वामी जी, कुछ गरीबों के लिए भोजन है कि नहीं। जब वो मिलेगा भक्त से तो वैष्णव की कृपा से ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो इनको क्या हुआ, असली में भगवान ने भी उस दिन, क्योंकि रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना की थी, अब भगवान लाइव होकर के दर्शन दे रहे हैं उनको सच में, और अपनी सौंदर्य को पूर्ण रूप से दिखा दिया। और ये इसने झलक क्या पाई, ये तो पागलों की भांति आचार्य स्वामी जी के चरणों में लिपट गया, फूट फूट कर रोते हुए कहा स्वामी जी मुझे आज्ञा दो, मैं वही करूंगा जो आप कहोगे, कहो तो मैं अपने हाथ से अपने देह की बोटी बोटी काट दूं, इतने पाप किए मैंने, त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखला दिया आपने, ऐसी कृपा करी मेरे मुख मेरे नेत्रों के सामने ही रह गए, अब मेरे नेत्रों के सामने से ये मुखारबिंद तो हट ही नहीं रहा है। धनुर्दास आचार्य के समझाने से घर आया, उन्होंने समझाया कि नहीं तुम बातुल मत बनो, अब प्रतिदिन आकर के दर्शन करो, प्रतिदिन अब तुम माला करो, ऐसे शुद्ध जीवन बिताओ। अब क्या हुआ, स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी, अब घर जाकर के उसको स्त्री कैसे लगने लगी अपनी, अभी तक जो इतनी सुंदर लग रही थी अब ऐसा लगा कि भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हाड़ मास का भरा हुआ 50-60 किलो का मलमूत्र का थैला है बस केवल, और क्या है बताइए, यही तो है। हम लोग वेट बढ़ने में थोड़ा सा शरीर बढ़ जाए तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? कि 10 किलो वजन बढ़ गया, अरे भैया 10 किलो मलमूत्र बढ़ गया, उसमें खुश होने की जरूरत है, उसमें खुशी होने की जरूरत है, मैं 10 किलो बढ़ गया हूं, 10 किलो मलमूत्र ढो और पिटारा भरा है ये गंदगी का, ये गंदगी का पिटारा ही और क्या है। तो अब क्या हुआ, ये जो है अब इतना बड़ा भक्त बन गया, विद्वान बन गया, इसका आचरण सुधर गया, धनुर्दास स्वामी जी का अत्यंत विश्वस्त अनुचर हो गया, स्वामी जी का ये बड़ा खास सेवक हो गया अब ये, और इससे अब मंदिर के जो वहां के मठ के भक्त थे उनको चिढ़ लगने लगी कि स्वामी जी इसको इतना प्रेम क्यों देने लग गए हैं, ये तो बड़ा ऐसा था वो था ये था। मैं इस घटना को बतलाने के लिए घटना को बात बताया। श्री रामानुज स्वामी वृद्धावस्था में कावेरी नदी में स्नान को जाते समय किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, स्नान करके जब लौटते थे शुद्ध होकर के तो धनुर्दास का कंधे का सहारा लेकर के लौटते थे, ये डेली का नियम बन गया था उनका, और मठ के ब्राह्मण शिष्य इससे कुढ़ते थे, बड़ा जलन होने लगी उनको। उनमें से एक ने तो कह भी दिया, महाराज आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छूते हो, हम लोग तो आपकी सेवा में सदा प्रस्तुत है ना, हम लोग तो मंदिर में ही रहते हैं, हम लोग बड़े शुद्ध हैं। तो स्वामी जी ने कहा मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ऐसा करता हूं। देखिए स्वामी जी कितनी विनम्र बात बोल रहे हैं, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ऐसा करता हूं। धनुर्दास का आचरण यहां के अनेक ब्राह्मणों से उत्तम है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी कभी कभी अपने शिष्यों को बोलते थे दासो अस्मि, अपने आप को बोलते थे मैं तुम्हारा दास हूं, क्योंकि वो प्रभु का जीवात्मा देखते थे उसमें, शिष्य बाद में देखते थे। तो ये जब स्थिति बहुत उच्च हो जाती है तो भक्त जो है सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति, अलग अलग व्यवहार होते हैं अलग अलग समय में, फिर अपने आप को अपने आप ही अधम सबसे गिरा हुआ समझता है, ये केवल शोभनीय अच्छे शब्दों के लिए नहीं सचमुच ऐसा समझता है। फिर स्थिति ऐसी होने पर आश्रम के लोग धनुर्दास से द्वेष करने लगे, यह देखकर आचार्य ने उस भक्त का महात्म्य प्रकट करने के लिए उनका गर्व दूर करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने क्या किया, एक रात उन्होंने अपने एक खास शिष्य को, मठ के शिष्य को, उन ब्राह्मण शिष्यों के कपड़ों में से एक एक बित्ता कपड़ा फाड़ कर लाने को कहा, बोले जितने भी वहां अंदर भक्त रहते हैं उनके एक एक कपड़े में से फाड़ लाना, अब जब सब देखेंगे तो क्या स्थिति होगी। और क्या हुआ, सवेरे अपने कपड़े फटे देख करके वे लोग परस्पर आपस में झपट झगड़ने लग गए, तूने मेरा फाड़ा, ऐसे बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह, कौवे जैसे चील कौवे लड़ते हैं ना, वो एक दूसरे की गर्दन पकड़ ली, गिरोबान पकड़ लिया सबने, कोई कुछ बोल रहा है, सारा भौतिक व्यवहार वो लग ही नहीं रहा था कि आश्रम है, गालियां देने लग गए, तूने मेरा फाड़ा, युद्ध हो गया वहां। स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े दिए और संतुष्ट किया, चुप रहो, कपड़े किसने फाड़े, यह बात छिपी रही। कुछ दिनों बाद उन्हीं में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास के यहां काफी रात तक सत्संग में रोककर रखेंगे, और कुछ शिष्यों को बोला, तुम इसके घर जाकर के इसकी पत्नी के गहने चुरा के ले आओ, क्योंकि मेरे को मठ मंदिर की मंदिर बनाना है, उसके लिए जरूरत है। तो धनुर्दास को वहां रोके रहे और कुछ भक्त लोग गए, और क्या हुआ वहां पर, उसने किवाड़ खुला रखा था, क्योंकि धनुर्दास अभी तक आए नहीं हैं। उनका नाम था वो जो धनुर्दास की पत्नी थी, हेमांबा। तो गहने चुरा लाना और लाकर मुझे देना, ये बोला था रामानुजाचार्य जी ने। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए, किवाड़ खोले थे और हेमांबा पलंग पर लेटी हुई पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वैष्णवों को लुकते छिपते दबे पैर घर में घुसते देखकर वह समझ गई कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं, और मन में यह बात आते ही उसने आंख बंद कर लिए। देखो, उसने भी क्या किए, आंख बंद कर लिए और झूठे खर्राटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेसुध सोते देख वो वैष्णवों ने उनके शरीर पर एक और गहने जो थे उसको उतार लिया। हेमांबा ने सोचा कि यह लोग शरीर के दूसरी ओर गहने भी ले लें तो अच्छा रहेगा। उसने करवट बदल ली, किंतु आए लोगों ने समझा कि ओ, इसकी शायद नींद खुल गई है, क्योंकि मुड़ने में हिलता है व्यक्ति। वो सबके सब लोग क्या किए, जितने गहने थे एक साइड के उसको लेकर के भाग गए। मठ में पहुंचे और रामानुजाचार्य स्वामी जी ने धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी। अब धनुर्दास को बोल रहे हैं, अब तुम जाओ, एक योजना बनाई थी उन्होंने ये घर। तो इस पे क्या हुआ, धनुर्दास के घर जाओ, हां, धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी। उसके जाने पर स्वामी जी ने इन लोगों से कहा, अब तुम लोग छिपकर धनुर्दास के घर जाओ और देखो कि वे स्त्री पुरुष क्या बातें करते हैं। अब वे लोग फिर से धनुर्दास के पीछे पीछे उसके घर गए जो चोरी करके लाए थे। धनुर्दास घर पहुंचे, पत्नी से सब बातें सुनकर वे बहुत ही दुखित हो गए। पत्नी ने बोला कि आज भक्त लोग आए थे, गहने चुरा के लेके गए थे, बस में थोड़ा करवट बदली तो फिर वो चले गए। इस बात पर क्या हो गए, धनुर्दास जो हैं बहुत गुस्सा हो गए, बोलने लगे कि तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उन वैष्णवों को करवट बदलकर चौंका दिया। अरे, करवट नहीं बदलती तो तुम्हारा क्या जाता, वो गहने भी दे देती तो तुम्हारा क्या जाता। अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा, तुम वैष्णव सेवा करने के योग्य नहीं हो, वैष्णवों के प्रति भक्ति जिसमें नहीं है, ऐसी औरत से मुझे क्या प्रयोजन। जबकि ऐसी बात नहीं थी, उसने करवट बदली थी कि इस साइड से भी ले जाएंगे। कैसी पत्नी, देखो कितना कितना बदलाव हो गया। देखिए, वे बेचारी रोते रोते पति के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, नाथ, मैंने तो करवट इसलिए बदली थी कि शरीर की दूसरी ओर के गहने भी वे लोग ले जाएं, पर मेरे दुर्भाग्य से वो भाग गए। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें, अब मैं बहुत सावधान रहूंगी, किसी अब ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से धनुर्दास जो है शांत हुए, उनने क्षमा भी किया। वे ब्राह्मण शिष्य जब लौट आए तो उनकी बातें सुनकर रामानुजाचार्य जी ने उस दिन वे फटे कपड़े निकालकर दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते हो, और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देखी ही ली, इसलिए मैं उसका आदर करता हूं और स्नान के बाद उसका सहारा लेकर लौटता हूं। बताओ कौन बड़ा वैष्णव है, कोई बाहर रहे अंदर रहे डजन मैटर, ग्रहे थाको बने थाको, किसके अंदर कितनी भक्ति है भैया, कौन कैसे समझ सकता है। आचरण से भी पता चलता है, लेकिन फिर भी 10% है कि 20% है, 50% है, 60% है, केवल बाहर के दिखावे से नहीं। तो किसी के बारे में भी सोचने से पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए, यह भी अपराध है। ऐसे कितने अपराध हमको घर करते हैं जिसके कारण हमारी भक्ति स्ट्रेगनेट हो जाती है। और उन्होंने क्या किया, धनुर्दास को बुलाकर गहने लौटा दिए, और ये गहने मैंने कुछ विशेष कारण से मंगवाए थे, उनको बोला तुम कुछ बुरा मत मानना। धनुर्दास आचार्य स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, ये शरीर जो कुछ भी है वो सब आपका ही है, बुरा मानने की क्या बात है इसमें। हेमांबा भी ऐसे भगवत भक्त का साथ पाकर तर गई। आज भी श्री संप्रदाय के वैष्णव धनुर्दास का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। और एक केवल धनुर्दास बोलने मात्र से आप लोग बोलेंगे धनुर्दास जी की जय, ये जय बोलने मात्र से भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से हम लोग भी पवित्र हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है कि दक्ष के इतने करने पर भी नारद मुनि जी जो हैं उनके प्रति सुनते रहे चुपचाप और कृपा का भाव बनाए रखे। हरे कृष्णा। सो समय थोड़ा ज्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूं। ये चरित्र बहुत अच्छा था क्योंकि इसी के लिए तो समय है। अच्छा, प्रसाद 10 बजे है आज, तो कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं। जी
जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके कीर्तन और
थोड़ा सा जोर से
बहुत ही आनंद दिया है।
थोड़ा जोर से,
थोड़ा सा जोर से है। ऑन है प्रभु जी, ऑन है।
हरे कृष्णा
जी।
कीर्तन और प्रवचन बहुत ही बढ़िया था।
धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्णा। ये एक शंका है,
मेरे से कोई बढ़िया नहीं था, ये चरित्र इतना बढ़िया है कि उसमें नाम मेरा हो जाता है, चरित्र उनका है बस, और कुछ नहीं है।
एक शंका है प्रभु
जी।
आपने ये बोला जब रूप गोस्वामी ने जो लीला देखा, उसके सामने जो ब्राह्मण गुजरे, उसके देह में कुष्ठ था, तो उसने गलत सोचा और उसके सोचने से रूप गोस्वामी में प्रभाव लगा और वो लीला चला गया
जी।
लेकिन मेरा प्रश्न है कि सामने वाला कुछ गलत सोचने से वो प्रभाव मुझे क्यों मिलेगा?
इस घटना से हमें ये सीखना है कि इतना भी अगर किसी को हमारे व्यवहार से, एक सामान्य शिष्टाचार में भी अगर कोई, जैसे समीक ऋषि जी भी ध्यान में थे, उन्होंने तो नहीं लिया कुछ भी, तो भगवत भक्त भी जो हैं अगर ध्यान में है, अगर कोई ऐसा सोचता है तो इतना माइनर जो है इस कलयुग के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इतना माइनर हमें लेना है कि कोई ऐसे भी व्यवहार में अगर वो हो जाता है तो लीला चली जाती है। ये केवल दिखाने के लिए नहीं, ये घटना सत्य थी, उनकी लीला सत्य में चली गई। तो सनातन गोस्वामी जी ने उनको बोला बाद में कि तुम एक प्रीति भोज करो जिसमें सारे ब्रजवासियों को बुलाओ आप। तो बहुत बड़ा फीस्ट मनाई गई और सभी आए और वो ब्राह्मण भी आया, तो वहां रूप गोस्वामी जी को सर्व करते हुए देखा उन्होंने और ब्राह्मण के प्रति भी सबके प्रति, तो उसको लगा कि नहीं ये तो बड़े अच्छे वैष्णव हैं, उत्तम वैष्णव है, मैं ही गलत सोच बैठा है। नहीं, जब ऐसा भावना आया तो उनका फिर से लीला जो है स्फुरित हुआ। तो इस घटना से शिक्षा है कि इतना माइनर भी जो है वो भी अपराध हो जाता है, ये शिक्षा है और क्या है इसमें, है नहीं। जबकि कलयुग में मन का पाप हुए थे, मन का चीज माफ है, ये कहा गया है, हम बड़ी राहत है हमारे लिए कि मन में अगर कुछ भी फिर भी माफ है, माफ कर दिया जाएगा। लेकिन एक और बात है, एक घटना और, कि अगर हम मायापुर जाएं, इसीलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, गौर नाम गौर धाम, ये अपराध जो है क्या है, मुक्त है। अगर मायापुर धाम में किसी वैष्णव से अपराध भी, यहां तक बता रखा है वैष्णव अपराध भी हो जाते हैं मन से जैसे भी, तो वो भी माफ कर दिए जाते हैं वहां जो भजन करता है, ऐसा दिव्य है वो, ऐसा दिव्य मायापुर धाम है। ठीक है कि नहीं? इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र पहले से जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं कि हमारा मन तो पूरी माला में बाहर ही रहेगा, तो हे प्रभु माफ करना आप, वो क्षमा कर देते हैं, अपराध नहीं लेते हैं जी।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण भाई
जी। प्रभु जी
जो भजन गाए उसका अगर अनुवाद बता देते तो अच्छा।
हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अब इसमें भी पता नहीं, फिर तो समय ही समय लगेगा, लेकिन मैं केवल पढ़ देता हूं। परम रसिक श्री नारद मुनि अपनी वीणा की मधुर झनकार पर श्री राधिका रमण जी का नाम गान करते हैं। जिस प्रकार वैदिक यज्ञ में सामवेद की ऋचाओं का गान करने से यज्ञपति स्वयं प्रकट होकर यज्ञ का फल देते हैं, पहले के समय में यज्ञ कुंड से यज्ञो वै विष्णु हूं, भगवान यज्ञ से प्रकट हो जाते थे और उसका फल देते थे, उसी प्रकार नारद गोस्वामी जैसे रसिक और भावुक भक्तों के जो ये नाम संकीर्तन है हरे कृष्ण महामंत्र सामूहिक गान करने से और उसको श्रवण करके नामी प्रभु श्री राधा रमण स्वयं हृदय में प्रकट होकर के नृत्य करते हैं, ऐसे भक्त जब गाते हैं तो। और जब हृदय में नृत्य करते हैं तो व्यक्ति नाचता है फिर, और क्या होता है, कभी वो कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है। और जब ये संसार के लोगों के कानों में भी पहुंचती है ये अमृत धारा, तो भक्तों के कर्ण छिद्रों में भी प्रविष्ट होती है, तो उन लोगों का हृदय भी आनंद से भर जाता है, जिससे प्रेम में आविष्ट होकर वे भी नाचने लगते हैं। और यह धारा नामा अमृत रूपी मदिरा माधुरीपुर चित्त में पहुंचकर सारे जगत को भी मत्त कर देती है, पागल कर देती है, जिसके प्रभाव से कोई रोने लगता है, कोई नाचने लगता है, कोई मन ही मन पागल हो जाता है। शिवजी भी नारद जी को पकड़ करके प्रेम पूर्वक जोर जोर से नाम गाते हैं, और ब्रह्मा जी भी नाचते नाचते हरिबोल हरिबोल बोलते हैं, बोलेंगे जोर से हरि 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 हरि। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, महादेव पंच मुखे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, शिव जी भी, और केवल बोलते नहीं हैं, नाचते हैं पागलों की भांति। सृष्टि करना, सृष्टि रुक जाती है उस वक्त में, रुकी पड़ी रह जाती है, सब जो है नाच रहे हैं। शेष नाग जी बहुत आनंदित होकर हरि हरि बोलने लगे, और इस प्रकार नाम के प्रभाव से सारा विश्व ही पागल हो जाता है, तथा सभी ऐसे अद्भुत नाम रस के प्राप्त कर लेते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण नाम मेरी जिह्वा पर स्फुरित होकर मेरी भी अभिलाषा पूरी करे। मेरी भी अभिलाषा है मैं भी भगवान के नाम में नृत्य करूं। ठीक है जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा
जी।
आप बताइए कि जो गृहस्थ रहते हैं, जैसे भगवान कृपा करते हैं तो उसका छीन लेते हैं, जैसे औरत से चली भाग जाती है, जैसा पैसा धन लूट ले छीन जाता है, तो ये गृहस्थों का हो गया। पर ब्रह्मचारियों को पास ना औरत रहती ना धन रहता है, पर उनका कैसा मतलब भगवान कृपा करते होंगे, कैसे मालूम पड़े हम लोग?
भैया मन से तो सोचते हैं ना, मन से तो सभी सोचता है। मन से अगर कृष्ण अगर आ जाए पूर्ण रूप से, कहीं ना कहीं अड़गड़ लगा हुआ है, हमारा भी कहीं ना कहीं कांटा गड़ा हुआ है। कोई भी क्यों ना हो, अगर भगवान में मन लग जाए पूर्ण रूप से, फिर तो कब हुआ नाचे कब हुआ कांदे होगा, है नहीं? तो अड़गड़ कहीं ना कहीं है, पैसे में है, स्थान में है, व्यक्ति में है, थोड़ा नाम में है कि नहीं, कि इससे नाम हो जाए, यश कमाने की इच्छा रह जाती है, सूक्ष्म रूप से बहुत सारी चीजें, तो बहुत प्रकार के अनर्थ हैं। हृदय दौर्बल्यम जिसको बोलते हैं, है नहीं? तो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, जो भी हो, मुख्य रूप से मेन बात यह है, भगवान प्रत्येक भक्त का, जैसे नारद मुनि जी, नारद मुनि जी ने भी भगवान की माया देखना चाहिए ना, तो भगवान ने जब उनको, नारद मुनि, भगवान बोलते हैं ठीक है नारद तुम जो है पानी पीने के लिए गए, तो वहां एक सुंदर तालाब था, नारद मुनि जी भगवान की माया देखना चाहते थे, और तो क्या देखते हैं, एक सुंदर युवती जो है पानी भरने वहां आई है, तो नारद जी भी पीछे पीछे लग गए उसके, और भूल गए कि भगवान ने किस कार्य के लिए मेरे को भेजा है। और जो है वो युवती एक घर में घुसी, तो नारद जी भी सीधे घर के अंदर ही घुसने लगे, तो उसके पिताजी देखते रह गए, भाई कौन है, बिना पूछे सीधे अंदर जा रहे, दिखने में तो नारद जी जैसे लग रहे हैं तमुरा पकड़ करके तो नारद जी तो प्रस्ताव ही रख दिए सीधे, वो कौन है, बिना कुछ पूछे बोले मेरी पुत्री है, बोले मैं उसका पाणी ग्रहण करना चाहता हूं, मुझसे शादी करना चाहता हूं। तो क्या देखते हैं, वो तो बड़े खुश हुए, भैया ऐसा ऐसा परम ब्रह्मचारी दामाद कहां मिलेगा, वो भी नारद जी। शादी भी हो गई, शादी हो गई तो शादी होकर के खेत जोत रहे हैं नारद जी, और वहां बच्चे हो गए, किसी को डांट रहे हैं, ग्वाला जा रहे हैं, सब कुछ। एक दिन क्या हुआ, बड़ा तूफान आया और पानी आ गया, तो उनका घर वर सब डूब करके सब बहने लग गए, बच्चे निकल गए, तो पत्नी रो रही थी, तो ये बोलते हैं भैया तुम तो हो ना, बच्चे तो और हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इतना रो क्यों रहे हो। तब तक देखा कि पत्नी भी बह गई, कि पानी इतना आ गया कि पत्नी भी बह गई, तो ये भाग रहे पीछे पीछे उसके, और भागते भागते इनके भी पानी इतना ऊपर से आ गया कि ये क्या किए, पकड़ ही रहे थे उसको, पत्नी को हाथ से छूट गई वो, एकदम शोकाकुल होकर के देखते हैं कि पानी वानी कुछ नहीं, भगवान सामने खड़े हैं। बोलते हैं मायावा देख ली, बोलते बस बहुत देख लिया, अब दोबारा से नहीं जाना है इस माया, यहां तो बड़ा खतरा है भैया, क्या देखना है माया, इतने थपेड़े पड़े कि मैं अभी तक वही मतलब समुद्र के थपेड़े ही मैं हूं। सब तो यहां कौन किसकी क्या इच्छा है तो सबके हृदय जानते हैं, है नहीं? ठीक है प्रभु जी, और कुछ? धन्यवाद बहुत बहुत है जी।
हाँ जी, संग में सहस्रानंद लिखा है तो कौन है?
सहस्रानंद सैकड़ों मुख से अपने, ठीक है कि नहीं? उनके कितने मुख हैं शेषनाग जी के? सैकड़ों मुख, हजारों भी लिख रखा है सहस्रानंद। बड़ा सुंदर ये भजन, इतना सुंदर है, अद्भुत। सहस्रानंद परम सुखे हरि हरि बोली गाए, नाम प्रभावे मातिलो विश्व, नाम रस सबे पाए। अद्भुत है, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, आज के आनंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।